हम नौ ही लेते हैं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। वो पहले सेक्शन का कंक्लूजन है 3.3 से 3.9।
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर। अनुवाद, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ओम अज्ञान निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्री प्रभुपाद की जय। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से तो तीसरे अध्याय के नौवें श्लोक तक क्या विषय है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? निष्काम कर्म योग। इंटेलेक्चुअल अपील फॉर एक्शन, कर्म करो, एक्शन लो, ये समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इंटेलेक्चुअल अपील करते हैं। इमोशनल हो गया पहले। इन इस सेक्शन में 3.3 टू 3.9 निष्काम कर्म योग में इंटेलेक्चुअल अपील फॉर एक्शन। इसमें नौवां श्लोक अंतिम श्लोक है, सार है। पिछले शुक्रवार को लास्ट प्रवचन में हुआ है शायद यह श्लोक 3.9 हुआ है, परंतु क्योंकि यह सार है तो इसलिए हम एक बार उसको रिवाइज करके आगे जाते हैं। पिछले श्लोक में अर्थात 3.8 में भगवान ने क्या कहा था? 3.8 में भगवान ने कहा था नियतम कुरु कर्मत्वम। अर्जुन को क्या कहे थे भगवान? नियतम कुरु कर्मत्वम, है ना? है कि नहीं? उसका अर्थ क्या है? जीवन निर्वाह करने के लिए अपने नियत कर्म करो, अन्यथा जीवन का निर्वाह नहीं कर पाओगे। अपने ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज यदि अपने निर्वाह अपने कर्म कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो जीवन का निर्वाह नहीं होगा। जीवन का निर्वाह होने के लिए कर्तव्य कर्म करो, लेकिन नहीं, डू समथिंग, कुछ करो। जैसे खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और इंद्रिय भोग करना, है कि नहीं? ये तो करना ही होगा ना, इसका तो निर्वाह करना ही है, है कि नहीं? यही अर्थ हुआ ना, कर्तव्य कर्म करो अन्यथा जीवन का निर्वाह नहीं कर पाओगे। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो खाना पीना सोना इंद्रिय तृप्ति भोग कैसे करोगे? यही अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ इसका? पिछला श्लोक है ये 3.8। 3.8 बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, क्योंकि कर्म करने से जीवन का निर्वाह होता है। जीवन का निर्वाह अर्थात खाना सोना सुरक्षा तथा शारीरिक भोग के लिए जीवन निर्वाह करना, यह है क्या? यदि यह है, यही तो है ना, और यदि है तो ये तो पशु भी करते हैं। हम कर्म क्यों करते हैं बताइए? रोज ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जीवन निर्वाह अर्थात क्या? सुख चाहते हैं ना, नहीं चाहते? शारीरिक सुख चाहते हैं, शरीर का सुख चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, अर्थात इंद्रिय भोग हो गए ना, कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कर्म किस लिए करते हैं? हम कर्म करते हैं सुख भोग, इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति, खाना पीना सोना, इन कार्यों के लिए हम कर्म करते हैं। लेकिन ऐसे कर्म तो पशु भी करते हैं, नहीं करते क्या बताइए? पशु भी यही करते हैं ना। तो क्या भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि पशु जैसे कर्म करो? तीसरे आठवें श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कर्म करना ही पड़ेगा, है ना, कर्म तो करना ही होगा आपको, अर्थात जीवन का निर्वाह नहीं होगा। अर्थात भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं क्या, पशु जैसा जीवन जीना ही पड़ेगा? ये इस प्रकार का संदेश न जाए, अर्जुन इस प्रकार से न समझे, इसलिए इस श्लोक में भगवान कुछ और बता रहे हैं। पिछले श्लोक में ये संदेश जा सकता है नहीं भाई, कर्म काम करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए, तो काम तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, सुख भोगने के लिए करते हैं, खाने पीने के लिए करते हैं, जो पशु भी करते हैं। पर अर्जुन तो कहे कि आपको ये सब नहीं चाहिए, तो जंगल में चला जाऊंगा, ना तो मुझे इंद्रिय भोग करना है, ना मुझे खाने पीने की कोई आवश्यकता है, झाड़ पाला फल पत्ते खा के जीऊंगा, जंगल में रहूंगा। तो इस प्रकार से संदेश न जाए, इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, अर्थात भगवान कह रहे कि यदि कोई व्यक्ति यज्ञ के लिए कर्म न करके अपनी शारीरिक यात्रा के लिए कर्म करता है तो उसे कर्म बंधन की प्राप्ति होती है। देखिए बहुत महत्व की बात है, पिछले श्लोक से यह संदेश जाता है कि सुख प्राप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोगों के लिए कर्म करना है, ऐसा संदेश जा सकता है अर्जुन को। इस प्रकार से उसको संदेश न जाए जो कि पशु का जीवन शैली है, इसलिए इस श्लोक में और क्लियर करते हैं भगवान। और क्लियर क्या बात को कहते हैं? कर्म करो, कर्म के बिना निर्वाह नहीं होगा। लेकिन कर्म कैसे करो? यज्ञ के लिए कर्म करो। यदि कोई यज्ञ के लिए कर्म न करके अपनी शरीर यात्रा के लिए अर्थात शारीरिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, सुख के लिए, भोग के लिए कर्म, केवल उसी के लिए कर्म करते हैं तो क्या हो सकता है? निश्चित तौर पे उसको क्या होगा? कर्म बंधन की प्राप्ति होगी। देखिए पशु का स्तर और मनुष्य का स्तर भिन्न तो है ही नहीं। मनुष्य के स्तर क्या है? मनुष्य कैसे कर्म करता है? मनुष्य शरीर से भी कर्म करता है, मन से भी कर्म करता है, बुद्धि से भी कर्म करता है, करता है। शारीरिक कर्म, शारीरिक स्तर क्या होना चाहिए? मनुष्य का क्या होना चाहिए? शारीरिक स्तर के कर्म जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? मनुष्य के क्या होने चाहिए? उसने एक बात ठान लेना चाहिए कि मेरे शरीर को या मेरे इंद्रियों को केवल सांसारिक भोगों में न लगने दे। ये मनुष्य का स्तर है। यदि मैं मनुष्य हूं तो मैं क्या सोचूंगा, मैंने क्या सोचना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, मेरे शरीर के प्रति क्या सोचना चाहिए कि मैं मेरे इंद्रियों को केवल केवल इंद्रिय तृप्ति में या सांसारिक भोगों में नहीं लगाऊंगा। यह मनुष्य की सोच है। क्या सोच है? क्या है सोच? मैं अपने इंद्रियों को केवल सांसारिक भोगों में नहीं लगाऊंगा, ये सोच किसकी है? यदि वो इस प्रकार से सोच रखता है तो समझना चाहिए कि यह मनुष्य अपने ही इंद्रिय की या अपने ही शरीर की सेवा कर रहा है। इसको कहते शारीरिक सेवा, अपने शरीर की सेवा, अर्थात अपने इंद्रियों को सांसारिक भोगों में न लगा के हम अपने ही शरीर की सेवा करते हैं, है कि नहीं? अच्छी बात है, अपने शरीर की सेवा। ऐसे तो बहुत बार हम कोशिश करते हैं अपने शरीर की सेवा करने की, बहुत सारी दवाइयां लेके है ना, ये क्रोसीन, टेरामाइसिन, क्या क्या है, सब सारे प्रकार की सीन खा खा के अपने शरीर की सेवा करने का प्रयास करते हैं और फिर इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। लेकिन शरीर की वास्तविक सेवा क्या है? अपने शरीर को या अपने इंद्रियों को केवल सांसारिक सुखों में न लगाना, ये वास्तविक शरीर की सेवा है। मन की सेवा क्या है? मानसिक स्तर, मनुष्य का मानसिक स्तर क्या होना चाहिए, मन से कैसे कर्म करना चाहिए, मन से किसी का अहित न सोचे, किसी का भी अहित न सोचे, अरे वो ऐसा है उसका नुकसान होना चाहिए, किसी का भी अहित न सोचे और कभी विषयों के चिंतन में न लगते रहे। यदि कोई व्यक्ति किसी का भी अहित नहीं सोचता है और नित्य विषयों के चिंतन में नहीं लगता है, लगा रहता है, वो व्यक्ति अपने ही मन की सेवा करता है ऐसा समझ। और वो मन जो है मनुष्य का मन है, पशु का नहीं, वो व्यक्ति अपने ही मन की सेवा करता है। बताइए, करना चाहेंगे मन की सेवा कि नहीं करना चाहेंगे? देखिए, मन को फ्रेंड बनाएंगे, उसकी सेवा करेंगे तो मन अच्छा आपका साथ देगा, आपको अच्छा रखेगा, हमारा मित्र बनेगा। यदि हम मन की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा वो शत्रु बन जाएगा, और मन यदि शत्रु हो गया तो क्या हो सकता है? पर्सनालिटी डिस्ट्रक्शन, पूरा व्यक्तित्व खत्म हो सकता है। मन ही तो सारा फसाद की जड़, सब कुछ तो वही करता है। तो मन को अपना मित्र बनाओ उसकी सेवा करके। मन की सेवा कैसे करेंगे? किसी का भी अहित न सोचे और अपने मन को नित्य विषयों के चिंतन में न लगाए, थोड़ा भगवत भक्ति के चिंतन में, भगवान के नाम के चिंतन में लगाए, ये मन की सेवा हो गई। ये मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। ये मानसिक कर्म, ये मन के द्वारा कर्म करना है। फिर बौद्धिक स्तर, बुद्धि को दूसरे के विषय में न सोचने दे। ज्यादातर अपनी बुद्धि दूसरे के विषय में सोचते रहती है, लेकिन उसके पास ये है, उसके पास मोटर है, बंगला है, ये है, वो है, वो ऐसा है, वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से बहुत अच्छा है, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। माता जी लोग, वो बहुत अच्छी सब्जी बनाती है, मैं वैसी बना नहीं सकती हूँ, वो कैसी बनाती है, उसको क्यों आता है इतना अच्छा है कि नहीं, मुझे क्यों नहीं, उसको क्यों आता है? तो अपने बुद्धि को दूसरों के विषय में न सोचने दे, ये बौद्धिक कर्म, बुद्धि कर्म करती है। इस प्रकार से मनुष्य जो कर्म करता है बुद्धि के स्तर पे, वो कैसे दूसरों के विषय में न सोचने दे, बुद्धि, उसको कहते बुद्धि की सेवा, बौद्धिक सेवा, बुद्धि की सेवा करना चाहिए। तो मनुष्य को इस प्रकार से यदि वो सेवा करता है तो वो मनुष्य के कर्म है। अन्यथा ऐसा नहीं करता है तो वो सारे कर्म किसके हैं? पशु के है। फिर मनुष्य को कहते द्विपाद पशु, दो पैर वाला जानवर है कि नहीं? यदि वो इस प्रकार से नहीं करता है, मन बुद्धि और शरीर से इन बातों को नहीं पालन करता है, इन बातों का, तो वो क्या है? द्विपाद पशु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से कर्म, इस विषय पे यह श्लोक बहुत महत्व का है। कर्म कैसे करना चाहिए, मन से, शरीर से, बुद्धि से कर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मनुष्य में कैसे कर्म करना चाहिए, और मनुष्यों में भी वर्ण है, कौन से वर्ण के व्यक्ति ने कौन से कर्म करना चाहिए, है ना? सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है, हमने पढ़ा है शास्त्र में, सुना है, सभी वर्णों के लिए भिन्न भिन्न कर्म है। जैसे ब्राह्मण है तो वो भिक्षा का भिक्षा करना, भिक्षा मांगना उसका स्वधर्म है, परंतु क्षत्रिय यदि भिक्षा मांगे तो उसके लिए वो परधर्म है। लेकिन ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं तो उनके लिए वो स्वधर्म है, परंतु क्षत्रिय भिक्षा मांगे तो उनके लिए परधर्म है। इसी प्रकार से मनुष्य का जो है निष्काम भाव से, कैसे निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना, ये मनुष्य का स्वधर्म है। क्या है स्वधर्म? हाँ, क्या है स्वधर्म? निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना ये मनुष्य का स्वधर्म है, परंतु सकाम भाव से कर्तव्य कर्म करना ये मनुष्य का परधर्म है। और भगवद गीता में कहा गया है परधर्म भयावह, उससे मृत्यु अच्छा। आगे भगवद गीता में आए स्वधर्म को छोड़ के परधर्म करना ये तो बहुत भयानक भयावह है, उससे तो मृत्यु अच्छा है। तो अपना स्वधर्म क्या है, मनुष्य का स्वधर्म क्या है? निष्काम भाव से कर्म करना। परंतु यदि वो वैसा नहीं करता है, सकाम भाव से कर्म करता है, तो क्या है? परधर्म है। उदाहरण है, जैसे कोई हमारे यहां आए, कोई गेस्ट आ गए हमारे, तो हम उनका बहुत स्वागत के लिए तत्पर रहते, आइए बैठिए, बहुत ही बढ़िया स्वागत करते हैं। विशेषकर आजकल शादियों में तो देखा जाता है, बहुत जोर शोर से स्वागत, बैंड पार्टी बड़ी रहती है और बड़ा एकदम धाम धूम और बहुत 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 बड़ा स्वागत होता है। ये स्वागत करने का मेरा भाव क्या होता है? कोई अतिथि गेस्ट मेरे यहां पे आए, उनका स्वागत करने का मेरा भाव क्या होता है? मेरा भाव ये होता है कि आइए बैठिए, बहुत सुंदर सुंदर अरेंजमेंट मैंने किया है। मेरा भाव क्या है कि मैं इनको इंप्रेस करूं, ये कहे कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं और कितना जोरदार स्वागत करता हूं। देखिए तो ये कौन सा भाव है, निष्काम भाव है कि सकाम भाव? स्वागत तो कर रहा हूं बहुत बड़े जोर शोर से, लेकिन अंदर भाव क्या है? मेरी प्रशंसा हो। परंतु निष्काम भाव किसको कहेंगे? वास्तव में हृदय से मैं इतना आदर सत्कार कर रहा हूं क्योंकि इन व्यक्ति की मैं सेवा करना चाहता हूं। इन गेस्ट जो मेरे यहां पे आए हैं, वास्तव में मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं, सेवा भाव बस। मुझे बाद में मेरे मुख पे या मेरे पीछे मुझे वो कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुरंत घर के बाहर जाते थे, दो चार शब्द बोल दे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं इनको ज्यादा से ज्यादा इनकी सेवा करना चाहता हूं। मैंने अपना ये हो गया निष्काम भाव, यही हमारा धर्म है, मनुष्य का धर्म यही है। अन्यथा दूसरा क्या है? दूसरा परधर्म है जो भया हुआ है। और देखिए एक बात ध्यान से, ये जो स्वभाव है सकाम भाव वाला, ये चोर है, चोर के जैसा है, गुप्त रूप में या छिपे रूप में अंदर पड़ा रहता है सकाम भाव, एकदम चुपचाप छिपे बैठा रहता है। चोर कैसा चोरी करता है? सामने आके नहीं करता है, छुप छुप के चोरी करता है। तो ये सकाम भाव जो होता है ऐसे दिखता नहीं है, अपन दिखाने के लिए दिखाते नहीं है, दिखता नहीं है, परंतु ऐसा अंदर बैठा रहता है, कब चोरी करेगा बोल नहीं सकता। कब हमारे अंदर ये भाव जागृत होगा सकाम भाव, बोल नहीं सकता। लेकिन कई बार हम देखते हैं सांसारिक जीवन में अचानक ही हमारे अंदर ये भाव जागृत हो जाता है, हम कुछ सेल्फिश स्वार्थी प्रवृत्ति हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
राम।
तो इस भाव से सतर्क रहना, सावधान रहना चाहिए, बी अलर्ट, हमारे स्वयं के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। भक्त लोगों की विशेषता रहती है, भक्त क्या रहते हैं, वो भक्त हमेशा सतर्क रहते हैं, भक्त हमेशा भक्ति में सतर्क रहते हैं। लेकिन मान लो भक्ति में थोड़ी देर के लिए भी नहीं रहे, छूट गई, तो तुरंत कौन सा भाव जागृत हो जाता है, सकाम भाव जागृत होता है, जो परधर्म है, जो भया हुआ है, जो बंधन में डालने वाला है। इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, भक्त है, साधक है, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। भक्त नॉर्मली सतर्क रहते हैं, और जब वो सतर्क नहीं रहते हैं, थोड़ा भी ढील छूट जाती है किसी भी कारण से, तो ऐसी संख्या कम हो जाती है। सकाम भाव में लग जाते हैं, आधे लोग आ जा गए, ढील छूट गई, दो चार हफ्ते की एक्सपेरिमेंट, यही एक एग्जाम्पल है। लेकिन तुरंत सकाम भाव इतना जागृत होता है कि छोड़ दो, क्या जरूरत है क्लास, एक बार दो बार और तीन बार क्लास मिस किया कि भगवत गीता की रुचि खत्म हो गई, समझ लीजिए। आप कितना भी सीडी पे सुनिए सीडी पे सुनिए, कहीं ना कहीं सत्संग अटेंड करना जरूरी हो जाता है। तो आज का जो एग्जाम्पल है वो यही है, ये श्लोक ही है कि सकाम भाव जागृत हो जाता है, भक्ति धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाती है, तीन फ्राइडे से क्लास नहीं हुआ है तो आधी संख्या हो गई। इसका अर्थ यह है सकाम भाव जागृत हुआ है, जागरूक रहना चाहिए। भक्ति यदि करना है, भक्ति में रहना चाहते हैं, तो जागरूकता बहुत आवश्यक है, सतर्कता बहुत आवश्यक है, अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारे अंदर जो चोर बैठा हुआ है सब कुछ लूट के ले जाएगा। इतने सालों में इतना कमाया भक्ति में आके, बहुत सत्कर्म किया, बहुत भक्ति की, बहुत कमाया, ये चोर इतना डेंजर है, एक दिन में सब चुरा के ले जाएगा, फटाक से ले जाएगा। कई लोगों को हमने देखा, कई वर्षों तक रहते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, और अचानक गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो चोर जो है, उन्होंने चोर को चांस दे दिया, चोर को चांस दे दिया, सकाम भाव को चांस दे दिया, सकाम कर्म में लग गए, भक्ति के प्रति उदासीन हो गए, दो चार बार नहीं आए, चार पांच बार नहीं आए, खत्म हो गए, भक्तों का संग नहीं रहा, चोर ने बहुत बड़ा डाका डाल दिया, बहुत बड़ा सब कुछ लूट लिया, वो भाव, वो प्रेम, वो भक्ति, सब कुछ चुरा लिया। तो इसलिए इस चोर के प्रति अलर्ट रहे, अलर्ट रहना चाहिए। हमारे अंदर उदासीनता तो नहीं आ रही है, चोर अपना काम कर रहा है क्या? जब करने में उदासीन हो गए, तुरंत समझना चाहिए चोर काम कर रहा है, चोर चोरी कर रहा है। सत्संग में जाने में उदासीनता आ रही, चोर चोरी कर रहा है। तो इस प्रकार से मनुष्य ने अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए, और स्वधर्म है निष्काम भाव से भक्ति करना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। परंतु कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं कर्म छूटता है, कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए कर्म संसार के लिए है, इसलिए है संसार में हम रहते हैं ना, तो संसार में रहने के लिए तो कर्म करना होगा, संसार से संबंध रखना होगा। कर्म के द्वारा हम संसार से संबंध रखते हैं तो रखना पड़ेगा, कंपल्सरी है कि नहीं? और योग के द्वारा हम भगवान से संबंध रखते हैं, नहीं? कर्म के द्वारा संसार से संबंध रखते हैं तो करना ही पड़ेगा, और योग के द्वारा किससे संबंध रखते हैं? भगवान से संबंध। इसलिए कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रहना उसको कर्म योग कहते हैं। कैसे? कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रहना उसको कर्म कहते हैं। जो हमको संसार से जोड़ के रखता है वो कर्म है, जो हमको भगवान से जोड़ के रखता है वो योग है। कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रखना वो भक्ति है। कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रहना वो भक्ति है, अर्थात कर्मयोग है। तो हमको क्या चाहिए? कर्म चाहिए, योग चाहिए, कर्मयोग चाहिए, है ना? क्योंकि संसार से जो जोड़ के रखता है वो कर्म है। जो हम कर रहे थे हम संसार से जुड़े हुए, तराजू है, तराजू संसार से तो जो जोड़ के रखता है वो कर्म है, और हम तो संसार से जुड़े हैं अर्थात हम कर्म कर रहे हैं। अब दूसरी दूसरा जो तराजू, दूसरा जो पलड़ा है वो ऊपर चला गया, इसका पलड़ा पलड़ा भारी हो गया। दूसरा पलड़ा क्या है? जैसे हम संसार से जुड़े रहते हैं वैसे भगवान से भी जुड़े रहे तो क्या हो जाएगा? हाँ, आजकल बोलते हैं ना बैलेंस्ड लाइफ। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड लाइफ। कितना भी बैलेंस करो, कितना भी अच्छे रहो, कितना भी बैलेंस करो, लेकिन भगवान से जुड़े नहीं है तो अल्टीमेटली आप 100% किससे जुड़े हैं? कैसे बैलेंस हो? और संसार क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। संसार से 100% जुड़े हैं और संसार में इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं, इसकी गारंटी। तो बैलेंस लाइफ हुआ? कितना भी यूनिवर्सिटी का कोर्स कीजिए बैलेंस लाइफ के ऊपर, यदि दूसरा फैक्टर नहीं है योग तो क्या है? तो बंधन है, कर्म बंधन है, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस श्लोक में कहा है यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के लिए कर्म कर, यज्ञ के लिए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों से बंधन प्राप्त होता है। अर्थात यज्ञ कर्म के अलावा जो भी कुछ करते हैं, यज्ञ कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करते हैं तो उस वो क्या है? फांसी का फंदा है, बंधन, अर्थात फांसी का। कोई लगाना चाहेगा? कोई नहीं लगाना चाहेगा। परंतु यदि यज्ञ कर्म नहीं करते हैं तो हम इनडायरेक्टली फांसी चढ़ा, फांसी पे लटक रहे हैं। उसका अर्थ होता है तंत्र सार नामक ग्रंथ में यज्ञ के संबंधित भगवान श्री कृष्ण के 5 नाम बताए हैं। श्लोक में बताया है यज्ञो यज्ञ पुमांश्चैव यज्ञेशो यज्ञ भावनः यज्ञ उकचेति पंचात्मा यज्ञेश्विज्जो हरिः स्वयं। अर्थात श्री कृष्ण को 5 प्रकार की यज्ञों की आत्मा कहा जाता है। अर्थात श्री कृष्ण कौन है? पंचात्मा, 5 यज्ञों की आत्मा। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम क्या है? उसके अनुसार तंत्र सार के अनुसार यज्ञ, यज्ञ अर्थात कौन? भगवान श्री कृष्ण। यज्ञ पुरुष अर्थात कौन? भगवान श्री कृष्ण। यज्ञेश अर्थात यज्ञ के, यज्ञ के ईश कौन? भगवान श्री कृष्ण। यज्ञ भावना अर्थात कौन? जिसको आहुति दी जाती यज्ञ के द्वारा वो कौन? भगवान कृष्ण। और यज्ञ यज्ञ भोक्ता कौन आहुति लेते हैं? तो भगवान कृष्ण। सो तंत्र सार के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 5 नाम हैं, अर्थात ये 5 यज्ञ अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यज्ञ अर्थात भगवान कृष्ण, यज्ञ पुरुष अर्थात भगवान कृष्ण, यज्ञेश अर्थात भगवान कृष्ण, यज्ञ भावना अर्थात कृष्ण, और यज्ञ भोक्ता अर्थात भगवान कृष्ण। अब इसमें क्या कहा इस श्लोक में? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, तो यज्ञ शब्द का अर्थ है क्या हुआ? यज्ञ शब्द का अर्थ भी यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, बराबर है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के जो कर्म करोगे वो क्या हो जाएंगे? बंधन में, क्योंकि यज्ञ इज इक्वल टू श्री कृष्ण, है ना। यज्ञ अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और इसलिए इसके अतिरिक्त सारे जो कर्म है वो बंधनकारी है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए यदि हम कर्म करते हैं तो ये शरीर की जो यात्रा है, शरीर यात्रा पे निकला हुआ है, ये मोटर है जा रही है, व्हीकल है, शरीर इज अ व्हीकल, बॉडी इज अ व्हीकल। यदि कृष्ण के लिए कर्म किए जाते हैं अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाते हैं तो ये शरीर की यात्रा पूर्ण हो जाती, और नहीं तो ये गाड़ी घूमते रहती घूमते रहती घूमते रहती लेकिन दिल्ली पहुंचती ही नहीं है, घूमते रहती है मोटर कार लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचेगी। परंतु जब इस प्रकार से कर्म भगवान श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं तो शरीर की यात्रा पूर्ण हो जाती है। कैसे करें आप, कैसे कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म, कैसे कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कैसे कर सकते हैं बताइए। अब रोज हम ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई और कुछ करते हैं रोज कुछ ना कुछ करते हैं सुबह से शाम तक, कृष्ण के लिए कैसे करेंगे? किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे? हमारा कर्म तो ऐसा है, मार्केट का काम है, भगवान को कृष्ण को प्रसन्न कैसे करेंगे? कहाँ मध्य में, टेबल पे हमने अच्छा स्मरण करते लेकिन वो कैसे करेंगे क्या? वो तो पता है कि नहीं, बिल्कुल सत्य है लेकिन कैसे करे वो होता नहीं है ना, लेकिन कोई बहुत ही बॉस है और बॉस एकदम क्रोधित हो गए। मैं अपने एग्जांपल से ही बता रहा हूं, कोई बॉस एकदम क्रोधित हो गए या कोई मार्केट का काम करता है एकदम भयंकर सिचुएशन हो गई मार्केट में, कृष्ण स्मरण होते कृष्ण की बिल्कुल ऐसे ही परिस्थिति में भगवान कृष्ण को हम भूल जाते हैं, वही सिचुएशन है कि नहीं? या कोई कलीग है साथ का, उसने कुछ ऐसा कुछ काम कर दिया कि अपना एकदम हेडेक हो गया, भयंकर क्राइसिस वाली सिचुएशन हो गई, कृष्ण को स्मरण करेंगे? कृष्ण का स्मरण नहीं होगा और कर्म करेंगे उस समय, कर्म तो करेंगे, कृष्ण भावना भावित होके नहीं कर्म हो गए, तो वो कर्म हमको कहां क्या कर सकते हैं? वो कर्म हमको बंधन में डाल सकते हैं, क्योंकि उसी समय हम भगवान को भूल जाते हैं एकदम। इसलिए क्या करना चाहिए, अपना जो ऑफिस है अपने ऑफिस को, अपने ऑफिस के रूम को या टेबल को जिस जहां बैठते हैं उस अपने ऑफिस को यज्ञ कुंड समझना चाहिए। हाँ अभी ऑफिस में पहुंचे, अभी आप कहां पहुंचे? यज्ञ कुंड के पास पहुंचे। यज्ञ कुंड पता है ना, ऐसा यज्ञ कुंड बनाते हैं। किचन में पहुंचे माता जी लोग सुबह कुकिंग करने, समझना चाहिए यज्ञ कुंड में प्रवेश किया, अभी यज्ञ करने के लिए यज्ञ कुंड के पास निकट खड़े हो गए। और अपनी प्रत्येक एक्टिविटीज, अपने प्रत्येक एक्टिविटीज एंड थॉट्स, अपने प्रत्येक छोटे छोटे काम और छोटे छोटे विचार, सारे विचार, इन सारे विचारों की उस यज्ञ कुंड में क्या करना चाहिए? आहुति देना चाहिए। अब ऑफिस का काम कर रहे हैं तो ऑफिस काम के रिलेटेड बहुत सारे विचार आएंगे। यज्ञ कुंड तो है आपका ऑफिस, और सारे विचार और सारे काम छोटे मोटे सारे ये क्या है? आहुति है। अब उस यज्ञ कुंड में आहुति डालो, पर उस यज्ञ कुंड में अग्नि चाहिए ना, यज्ञ कुंड तो है, आपने ऑफिस को कुंड बना दिया, आहुति के लिए सामग्री भी है क्या? आपके कर्म और विचार। वो अग्नि की तो साधना होनी चाहिए, तो वो अग्नि अर्थात भगवान श्री कृष्ण का नाम। क्या? भगवान कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुंड भी है, आहुति की सामग्री भी है, अब्सेंट क्या रहता है ज्यादातर? अग्नि देव नहीं रहते। तो अग्नि को स्थापित कीजिए जाते से ही। ऑफिस में बैठे यज्ञ कुंड तैयार है, सामग्री है, अब भगवान अग्निदेव भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को स्थापित कीजिए, अर्थात अंदर मन में चिंतन शुरू कर दीजिए, स्मरण शुरू कर दीजिए भगवान के नाम का। है कि कई लोग हमने देखे भक्त लोग ऐसे अपने प्रत्येक काम में हर एक मिनट में हरे कृष्ण बोल देते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण हरे बोल। बहुत लोग ऐसे, शुरुआत को हमको बहुत कठिन लगता है, लेकिन कोई डिफिकल्ट नाम है क्या? फिर कठिन क्यों लगता है? कठिन इसलिए लगता है कि स्मरण नहीं होता है। देखिए इतना सीधा सीधा सिंपल नाम है, लेकिन स्मरण होता है क्या? होता है नहीं होता है हमेशा स्मरण? इसलिए अपने ऑफिस को यज्ञ कुंड बना के अपने विचारों को और छोटे मोटे सारे कर्मों को आहुति बनाइए। जैसे ही गए पहले सोचिए कि अभी मैं हवन कर रहा हूं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूं। और इसी प्रकार से जो कर्म करते हैं उसको कहा गया यज्ञ कर्म, क्योंकि भगवान भगवद गीता में आगे कहेंगे, क्या कहेंगे? जब बोलिए मैं कौन हूं यज्ञों में? जप यज्ञ हूं भगवान कहते हैं, यज्ञानाम जपो यज्ञास्मि। सारे यज्ञों में मैं कौन हूं? जप यज्ञ हूं। तो इस प्रकार से जो कर्म करते हैं वो यज्ञ कर्म है प्रभु जी, अन्यथा क्या है? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, अन्यत्र नहीं चाहिए। इसी प्रकार से कर्म करना चाहिए। अपने संपर्क में जो भी कोई आएगा, जब आप इस प्रकार से यज्ञ करोगे करते रहोगे, हम जिस प्रकार इस प्रकार से यज्ञ करते रहेंगे, और हमारे संपर्क में यदि कोई भी तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी आ गया, तो वो भी इस प्रकार का यस सक्सेस देख के, इस प्रकार का एक्शन, इस प्रकार का कर्म देख के, वो भी उस प्रकार के कर्म में लग जाता है, यज्ञ कर्म। लेकिन हरिदास ठाकुर का उदाहरण है, सभी को पता, वो यज्ञ कर जब जपो यज्ञ कर रहे थे, और उनको डिस्टर्ब करने के लिए एक स्त्री आई, हीराबाई, परंतु उन्होंने क्या कर दिया, उनको यज्ञ में बिठा दिया, आप भी यज्ञ करो, आहुति दो, है कि नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने हमको 16 माला जप करने का नियम दिया है, नहीं दिया है ना? 16 माला जप करने का नियम दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। यदि भक्तगण जप करते हुए अपने शरीर की रक्षा करते हैं तथा खाने सोने जैसे आदि कर्म करते हैं, तो यह कर्म भी क्या बन जाते हैं? यज्ञ कर्म बन जाते हैं, जिससे कर्म बंधन नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तगण इस प्रकार से जप करते रहते हैं, और यह कर्म जप करते हुए यदि अपने कर्म भी करते हैं, सुख शरीर सुख खाना पीना सोना सब करते हैं, तो भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। सोच कितनी बड़ी फैसिलिटी दी है प्रभुपाद जी, है कि नहीं? तो भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो तो यज्ञार्थात कर्म करना चाहिए। यज्ञ कर्म में बहुत सी बातें हैं, प्रसाद ग्रहण करना भी यज्ञ कर्म ही है। मराठी में श्लोक है, क्या याद है आपको? जानिजे यज्ञ कर्म उदर भरण नोहे, जानिजे यज्ञ कर्म उदर भरण नोहे, केवल उदर का भरण नहीं, जानिजे यज्ञ कर्म, इसको यज्ञ कर्म समझिए। यज्ञ कर्म क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद हम पा रहे हैं, तो भगवान का नाम जब करना, फिर लंच टाइम जब ऑफिस में होता है तो प्रसाद पाना भी यज्ञ कर्म है, है कि नहीं? तो इस प्रकार से कर्म करना चाहिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि हो। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा विस्तृत रूप से कहते हैं, यदि कोई अपने परिवार का पालन करना भी चाहता है, अपने परिवार का पालन करना, माता पिता पत्नी बच्चे इनका पालन पोषण करना, अपने पारिवारिक कर्तव्य कर्म निभाना, यह भी यज्ञ कर्म बन सकता है। रूपा जी कहते श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में रूपा जी कहते हाँ? संसार में रहना है, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करना, हाँ? यह भी यज्ञ कर्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना होगा? कुछ एक अमुक समय निश्चित करके सभी ने उस समय भगवान का नाम लेना होगा। क्या करना होगा? मुख से कुछ समय के लिए सभी ने मिलकर, ये नहीं कि सभी की ब्याह को मैं एक कहना लेता हूं, ऐसा नहीं होता। कोई कहेगा मैं तो फैमिली हेड हूं ना, मैं 16 के बदले 36 32 माला जप करता हूं, फैमिली को करने दो मजा, चलेगा ऐसा? कई बार ऐसा होता है, परंतु यदि मुझे भूख लगी, बहुत भूख लगी, और मैंने सोचा कि मुझे भूख लगी है लेकिन ठीक है, मेरे फैमिली मेरे परिवार के सदस्यों ने खाया तो मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा होता है? इसलिए भले 5 मिनट क्यों ना हो, एक माला के लिए 8 मिनट लगता है बस, पूरे सारे सदस्य परिवार के कोई एक समय फिक्स करे और उस समय भगवान के नाम का जप करे साथ में, कोई भी समय फिक्स करे, रात को 12 बजे भी किया तो चलता, एनी टाइम, और भगवान का दर्शन करे, अपने घर में विग्रह हो गए, है ना? कितना मिनट लगता है दर्शन करने के लिए? हार्डली 2 मिनट, सब एक साथ हार्डली 2 मिनट्स, 2 मिनट्स भी नहीं लगेगा, कितना हो गया? 10 मिनट हो गया। और साथ में सब एक साथ कुछ सुने, 5-10 मिनट्स, 5-10 मिनट साथ में भगवत भक्ति के विषय में, आध्यात्मिक तत्वों के विषय में कुछ सुने सब एक साथ मिलकर, कितना मिनट? 5-10 मिनट, तो कितना हुआ? 10 और 10, 20 मिनट हो गए। और साथ में एक बार तो भी दिन में साथ में प्रसाद पाए, खाए साथ में बैठे, तो इस प्रकार से कोई जीवन यापन करता है और अपने परिवार का पूरा पालन पोषण लालन पालन करता है, पति पत्नी बच्चे माता पिता सब, तो उसको भी यज्ञ कर्म कहा जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, है कि नहीं? कितनी फैसिलिटी, आप सोचिए फैसिलिटी का सोचिए। कलयुग में कुछ कठिन है, वही हम लोग यदि मान लो सतयुग में होते कितना कठिन, ऐसे आराम से बैठ सकते थे अभी? नहीं, हम सब कोई एक पैर पे खड़ा होता, कोई सर ऊपर पैर नीचे, पैर नीचे सर ऊपर करके, कोई जंगल में होता, कोई किसी के शरीर पे पूरा वो रावड़ा चढ़ा गया होता सत्ययुग में होते तो ऐसा ही होता ना, होता कि नहीं होता? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए सब करना पड़ता था। अब तो भगवान बोले ठीक है फैमिली में रहो, सांसारिक पारिवारिक सुखों को भोगो, इंद्रिय तृप्ति भोगो, सब करो, खाओ पियो सो सब करो, उसको भी यज्ञ कर्म कहा जाएगा। लेकिन केवल ये 30 मिनट 40 प्रसाद वगैरह मिला के 35-40 मिनट साथ में 40 मिनट्स 40 मिनट्स का यज्ञ रोज करो तो कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, है कि नहीं प्रभु जी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है, तीसरे स्कंद में है, शायद तीसरा स्कंद है 23-24वां कोई अध्याय। कर्दम मुनि, कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए अपने योगिक शक्ति के द्वारा इतना सुंदर विमान तैयार किया, किसके लिए? अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए, देवहूति के लिए इतना सुंदर विमान तैयार किया। उस विमान की यह विशेषता थी, उस विमान में बैठने पे उसको जो बोले वहां ले जाए, बस बोलना है चल यहां पे चलो महावीर नगर, तुरंत महावीर नगर, ऐसा विमान। कर्दम मुनि ने अपनी योगिक शक्ति के बल पर अपने पत्नी की प्रसन्नता के लिए, और उस विमान में बैठने पे कोई भी सुख की इच्छा करो, किसी भी प्रकार के सुख की इच्छा करो पूर्ण हो जाएगा। उस विमान में सारी फैसिलिटी सब एवरीथिंग, जो 5 स्टार समझ लीजिए आप, 7 स्टार फैसिलिटी सब उस विमान में। पत्नी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने किया, वो तो योगी पुरुष थे, ऋषि कर्दम मुनि थे, ये सब किया, उसको भी यज्ञ कर्म माना गया, सुख का भोग किए कर्दम मुनि और देवहूति उस विमान पे, लेकिन उसको यज्ञ कर्म माना गया। क्यों? प्रश्न पूछा जा रहा किसी, सब लोग भागवत कथा सुनते हैं यहां, तो कभी ये प्रश्न पूछा होगा, किसी ने सुना होगा क्यों किया ऐसे, और उसकी प्रशंसा की जाती है, उनके ये कर्मों की प्रशंसा की जाती है। हालांकि शास्त्र में कई जगह बताया गया है कि भोग नहीं करना चाहिए ये सब, बताइए। और
भगवान का स्मरण करते हैं तो
कौन
करते हैं?
ठीक, आसपास में उत्तर है, क्योंकि उनको पता था कि देवहूति की जो चेतना है वो इस प्रकार से कि वो भगवान को चाहती है, भगवान को अपने पुत्र के रूप में चाहती है, तो भगवान आने वाले हैं, तो भगवान आने के कारण, भगवान आने वाले हैं इस भाव के कारण, भगवान की कॉन्शियसनेस, भगवान की चेतना, कृष्ण भावना भावित होने के कारण उनकी ये सारे जितने भी कार्यकलाप थे उसकी प्रशंसा की जाती है तीनों लोगों में। अपने पत्नी के लिए उन्होंने, पत्नी की संतुष्टि के लिए सब किया, लेकिन सारे ऋषि मुनि और सब उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या थी, चेतना भावना क्या थी, भगवत भावना। इसी प्रकार से यदि भगवत भावना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, और हम सांसारिक कार्यकलापों में लगे हैं लेकिन राइट कॉन्शियसनेस, तो ये क्या है? यज्ञ कर्म है कि नहीं? कितनी बड़ी फैसिलिटी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसी में आगे कहा गया कर्म बंधन यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अब लोकोयम अर्थात यह जो बता गया है लोकोयम, इसी धरती पे, ये धरती के मनुष्य प्राणियों के लिए यह यज्ञ कर्म है, ये जो है लोकोयम अर्थात इस धराधाम पे जो मनुष्य जाति है इन्हीं के लिए ये फैसिलिटी है। लोकोयम नॉट फॉर देवम, प्राणिम देवम ऐसा नहीं है, क्या है? लोको यम, ये यज्ञ कर्म की फैसिलिटी देवों को भी नहीं है, वो भी भोग योनी है, देव भी भोग योनी है। एक बार जितने पहले पुण्य कर्म कर लिए इसके अनुसार देव बन गए, अभी कुछ नहीं कर सकते, भोगो उसको जो कमाया हो। लेकिन पुरुष मनुष्य जन्म इसमें अपने कर्म भक्ति के द्वारा कर्मों के बंधन तोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को और ऊंचे के ऊंचे 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 स्तर पर ले जा सकते हैं, है कि नहीं? ये फैसिलिटी केवल लोको यम लोकों को दी गई है, मनुष्य को दी गई, मनुष्य प्राणी को दी गई, और इसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए ना। नहीं उपयोग ही नहीं होता है फैसिलिटी का, अपने आप को पूछना चाहिए उपयोग में ला रहे हैं फैसिलिटी की नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो अपन कैसे तुरंत उसका पूरा पूरा उपभोग ले लेते हैं, है कि नहीं? कोई सब्सिडी आ गई गैस की या किसी की भी, एक गैस भी नहीं छोड़ते, एक सिलेंडर। कोई फैसिलिटी आ गई छोटी मोटी 100-200 रुपए की, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते। कोई बोनस आ रहा हो समझो, है कि नहीं? दिवाली बोनस, ये बोनस, 100 कॉल लगाएंगे उसको, कोई आया नहीं, कोई फैसिलिटी कोई बोनस हो बहुत पीछे पड़ेंगे। और ये बोनस बार बार शास्त्र कहते हैं, बार बार साधुगण कहते हैं, बार बार गुरु परंपरा कहती है, सारे शास्त्र कहते हैं, लेकिन इसके विषय में याद दिलवाना पड़ता है। अरे भाई हमको ये फैसिलिटी है, अरे हमको ये फैसिलिटी है, ये स्मरण करवाना पड़ता है। ये ही दुर्भाग्य की बात, ये तो इंस्टेंटली होना चाहिए स्मरण कि नहीं ये मेरे पास फैसिलिटी है, इसका मैं पूरा पूरा उपयोग कर रहा हूं। नहीं परंतु ऐसे बहुत कम होता है। प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं, हम सब भाग्यशाली है कि हम कम से कम समझने का तो प्रयास कर रहे हैं, और ट्रेनिंग कैंप में है है ना, ट्रेनिंग ले रहे हैं हम सब। तो इसमें कहा गया है लोको यम कर्म बंधन, इस श्लोक में, इस अध्याय में पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा था क्या, हे केशव आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, पूछा था ना, अर्थात हे केशव आप मुझे ये कर्म बंधन में क्यों डाल रहे हो, घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो अर्जुन उनके मन के अनुसार विचार कर रहे हैं, घोर कर्म कह रहे हैं इसको। घोर कर्म से क्या होता है, कर्म बंधन होता है ना, घोर कर्म से क्या होता है, कर्म बंधन होता है। परंतु जो कर्म उनके मन को घोर लगता है उसको नहीं करना चाहिए, ऐसे अर्जुन सोच रहे। उनके मन को जो घोर लगता है वो नहीं करना चाहिए, और जो सौम्य लगता है वो करना चाहिए, बराबर है, ऐसे अर्जुन सोच रहे हैं। अर्जुन को युद्ध करना घोर कर्म लग रहा है, और सौम्य कर्म क्या लग रहा है, जंगल में चलना सौम्य, क्योंकि सौम्य कर्म से कर्म बंधन नहीं लगते, घोर कर्म से कर्म बंधन लगते। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता है, विपरीत भी हो सकता है, घोर कर्म से कर्म बंधन से छुटकारा भी हो सकता है, और सौम्य कर्म से कर्म बंधन में फंस सकता है, ये हो सकता है। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि घोर कर्म से बंधन ही होगा और सौम्य कर्म से छुटकारा होगा, नहीं उल्टा भी हो सकता है। अभी देखिए भगवान राम का उदाहरण है कि नहीं, रामायण सब जानते हैं, मैं इतना नहीं जानता हूं, पर आप सब तो जानते ही। भगवान श्री राम ने वानर राज वाली को मार दिया, जैसे युद्ध करते हैं तो वानर राज वाली को भगवान राम ने मार दिया, वो चिल्लाने लगा जोर से वाली, तो कहने लगा हे श्री राम आपने ये क्या कर दिया, अरे मेरे मरने के पश्चात लोग आपको क्या कहेंगे, उनको जवाब क्या देंगे आप, आपने अपना नाम बदनाम कर दिया, कितना घोर कर्म किया। और भगवान आप तो इसमें बंधन में फंस जाओगे अभी, ये ऐसा कर्म आपने किया घोर कर्म, आप बंधन में फंस जाओगे, घोर कर्म से तो बंधन में फंस जाते। तब भगवान श्री राम क्या कहे, भगवान श्री राम कहे मेरे पास उनको देने के लिए उत्तर है। क्या उत्तर है? इस देश के राजा समस्त पृथ्वी के राजा भरत महाराज, राजा भरत है। और राजा भरत के राज्य में अधर्म नहीं होना चाहिए, और मैं राजा भरत का एक सैनिक हूं, एक राजा भरत का एक प्रशंसक हूं, और राजा का सहकार्य करना मेरा कर्म है, और राजा के राज्य में यदि कोई अधर्म कर रहा है तो ऐसे अधर्मी को कोई भी अवस्था में मारने का न्याय है। यदि वो भाग रहा है अधर्मी और भाग रहा है शस्त्र छोड़ के, तो भी उसको पीछे से वार कर सकता है क्योंकि अधर्मी है। हे वानर राज वाली, तुमने बहुत बड़ा अधर्म किया है, तुमने स्त्री का अपमान किया है, सुग्रीव के साथ अन्याय किया है, और ये राजा भरत के राज्य में अधर्म है, और इसलिए मैं तुमको घोर कर्म किया, लेकिन इसलिए मैं उसके बंधन में नहीं फंसूंगा और तुमको भी मोक्ष मिल जाएगा, वो तो आगे की कथा है, परंतु इसलिए मैं बंधन में नहीं फंसूंगा। घोर कर्म हुए, अर्जुन ने आगे जाके युद्ध किया, कितना घोर कर्म किया, कितने लोगों को मार दिया। अरे अपने भीष्म पितामह को मार दिया, अपने ही लोगों को, कितना घोर कर्म है, लेकिन बंधन में फंसे हैं नहीं, बंधन में फंसे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि घोर कर्म करने से कोई बंधन में फंसता ही है, लेकिन वो घोर कर्म का आधार क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म अर्थात भगवान के उपदेश, अर्थात वो घोर कर्म भगवान के आज्ञा या उपदेश या मर्जी के अनुसार होना चाहिए, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कोई कहे हम सौम्य कर्म करते हैं तो हम बंधन में नहीं फंसेंगे, परंतु ऐसा है नहीं। भरत महाराज की कथा सब जानते हैं, पांचवें स्कंद में, कितने सादे सीधे राजा थे और उन्होंने कितना सौम्य सादा सीधा काम किया। क्या किया? एक हिरण के बच्चे को बचाया और उसका पालन पोषण किया, सौम्य कर्म है कि नहीं? कितना सौम्य कर्म, लेकिन बंधन में फंस गए। तो हम कभी ये सोचते हैं थोड़ा सा एक आधा सिनेमा देख लिया, सौम्य कर्म है, थोड़ी बंधन में फंसेंगे। शास्त्र में कहा है घोर कर्म करो तो बंधन में फंसेंगे, सौम्य कर्म करो थोड़ी बंधन में फंसेंगे। एक आध बार चीटिंग कर लिया सौम्य कर्म, लेकिन भरत महाराज जैसे को सौम्य कर्मों ने नहीं छोड़ा, हमको छोड़ेगी हम हमारे कर्म? कदापि नहीं सोचना चाहिए कि छोटा मोटा सौम्य कर्म है कोई बंधन में नहीं फंसेंगे, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। क्या एक आध बार जप नहीं किया क्या फर्क पड़ता है, रोज तो करते हैं, रोज तो करते हैं ना, एक आध बार नहीं किया सौम्य कर्म है थोड़ी ना बंधन में फंसेंगे। सौम्य कर्म से भी बंधन में फंस सकते हैं। अर्जुन की ये जो है ना यहाँ पे गलत फहमी है, अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि घोर कर्म से ही मैं बंधन में फंस जाऊंगा और जंगल में जाने वाला या संन्यास लेने वाला सौम्य कर्म करूंगा तो बंधन में नहीं फंसूंगा, परंतु भरत महाराज तो फंसे थे सौम्य कर्म करके बंधन में, है कि नहीं? और घोर कर्म करके श्री राम नहीं फंसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जो यज्ञ कर्म नहीं करते हैं उनको तीन प्रकार के बंधन है, जो यज्ञ कर्म नहीं करते हैं तो बंधन में फंसते हैं, लेकिन कैसे? तीन प्रकार के बंधन है। इसका अर्थ ये कर्म फल तीन प्रकार का होता है, अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित। अनिष्ट कर्म, इष्ट कर्म और मिश्रित कर्म। अनिष्ट कर्म किसको कहते हैं? जो अज्ञान पे आधारित होते हैं, अर्थात अज्ञान को ही अनिष्ट कर्म कहते हैं। अज्ञान कौन सा? मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, सारा दुख इस संसार में क्यों है, मुझे क्यों है। कई लोगों को ऐसी बातें करो तो वो बोलते क्या पागल हो गया क्या। अर्थात इतना अज्ञान है कि उनको ये सब्जेक्ट मैटर ही पता नहीं है। कई लोग तो हमने देखा कई वर्षों से भागवत और गीता के क्लास में जा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे कई वर्षों से, लेकिन उनको ये प्रश्न पूछो मैं कौन हूं, ये क्या पूछ रहे बोले मैं कौन हूं, पता ही नहीं। अर्थात अज्ञान। जिसको ये पता नहीं है वो तमोगुणी है, अज्ञान अर्थात तमोगुण। तो इस अज्ञान के आधार पर जो कर्म करता है वो कौन से कर्म है? अनिष्ट कर्म है, वो बंधन में डाल देते हैं। क्योंकि वो सादी सादी सिंपल पहला बेसिक क्वेश्चन नहीं जानता है, प्रश्न नहीं जानता है, मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, भगवान कौन है और मेरे भगवान के साथ संबंध क्या है। तो ये क्या है? अनिष्ट कर्म। यह बात न जानते हुए जो कोई भी जो कुछ भी कर्म करते हैं वो सब क्या है? क्या है? अनिष्ट कर्म है, जो बंधन में फंसा देते हैं। तो आप मुझे जरा कैलकुलेट करके बताइए कितने लोग इस संसार में ये बात जानते हैं, मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है? कितने परसेंट लोग जानते? तो कितना अनिष्ट कर्म इस संसार में हो रहा है सोचिए। पूरा अनिष्ट कर्म इस संसार में हो रहा है, परंतु जो इस प्रकार के भक्तगण हैं, जो सदैव तत्पर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं भक्ति के प्रति, केवल उन्हीं के अच्छे कर्मों के कारण संसार बैलेंस रहता है। ये संसार तो पूरा पापमय है क्योंकि अनिष्ट ही अनिष्ट है सब, परंतु केवल जो ये सब जानते हैं और भक्ति करते हैं तत्परता से अलर्ट रह के, उनके कारण संसार बैलेंस है। लेकिन तो इस प्रकार के तमोगुणी जो होते हैं वो कर्म बंधन में फंसा देते हैं। दूसरे प्रकार का कर्म है इष्ट कर्म। इष्ट कर्म अर्थात कल्याणकारी कर्म, जो अपना कल्याण करा देते हैं। सतोगुणी लगभग होते हैं, शुद्ध सत्व सतोगुणी। इनके कर्म जो होते हैं या इनके सतोगुणी कर्मों के फल जो होते हैं वो निर्मल होते हैं, कोई मल नहीं होता, निर्मल फल मिलते हैं। उससे क्या लाभ होता है? इससे लोग बंधन में नहीं फंसते। क्यों बंधन में नहीं फंसते हैं? क्योंकि ये जब कर्म करते हैं तब सब जानकर कर्म करते हैं कि क्यों कर्म करना है, कौन से कर्म करना है, कैसे कर्म करना है। उसको इष्ट कर्म कहते हैं। पहले कौन से हुए? दूसरे कौन से हुए? जो कल्याणकारी। तीसरे कौन से? मिश्र बंधन, मिश्र कर्म बंधन। अब ये इष्ट तथा अनिष्ट दोनों का मिश्रण है, लेकिन ये रजोगुणी कर्मी होते हैं। पहले कौन से? तमोगुणी। दूसरे कौन से? तीसरे कौन से हैं? रजोगुणी। ये दोनों मिश्रित है, मिश्रण है, दोनों इष्ट और अनिष्ट का मिश्रण है। बड़ी इसमें बड़ा दुख होता है, सबसे ज्यादा दुख तो इसी को होता है। क्यों होता होगा इसका? इसमें दोनों दुख सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों का ज्ञान होता है, इष्ट का भी ज्ञान होता है और अनिष्ट का भी ज्ञान होता है। रजोगुणी जो कर्म होते हैं या रजोगुणी जो कर्ता होता है उसमें क्या है, दोनों बातों का ज्ञान होता है, इष्ट और अनिष्ट। इष्ट अर्थात क्या, जो प्राप्त उसको करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, अर्थात जो पाना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है। इसकी समस्या ये होती है कि जिस बात को ये पाना चाहता है उसको ये वो बात प्राप्त नहीं होती, और जिस बात से ये छूटना चाहता है वो बात इसको छोड़ती नहीं है कि नहीं प्रॉब्लम। कल्याण, ज्ञान, ये सब पाना चाहता है, इतना सब प्रवचन कर रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, चलो अब भक्ति करता हूं, बहुत अच्छा है भक्ति, बहुत अच्छा है ज्ञान, बहुत ही अच्छा है भगवत गीता, वेरी नाइस, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, समझ सब। इस ज्ञान को पाना चाहता हूं लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है, सुबह 6 बजे उठ के ड्यूटी पे जाना पड़ता है, ये प्राप्त करना चाहता है, नहीं प्राप्त हो रहा है। प्राप्त क्या हो रहा है, जहां ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है वहां पूरा का पूरा कुसंग है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई अस्ताव्यस्त जीवन शैली में रहते हैं, वो नहीं चाहता हूं, वो मिल रहा है जो चाहता हूं, जानता हूं, पता है, ज्ञान है क्या करना चाहिए, लेकिन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिससे छूटना चाहता हो वो छोड़ नहीं रहा, जो पाना चाहता हो वो प्राप्त नहीं हो, दुख की कंडीशन है, दुख की स्थिति, सबसे ज्यादा दुख की स्थिति। ये किसके, ये किसका उदाहरण हो सकता है किसका उदाहरण हो सकता है, ये रजोगुणी करता क्या है, इतने सब सुन रहे, समझ रहे, प्रयास कर रहे, सब क्या है, सब ज्ञान भी है, क्या अनिष्ट है ये भी पता है, क्या इष्ट है वो भी पता है, मिश्रित रजोगुणी। परंतु यह समझना चाहिए मनुष्य शरीर में ही यज्ञ के लिए कर्म की जिम्मेदारी, अर्थात यज्ञ कर्म की जिम्मेदारी मनुष्य शरीर पे ही है, ये बात समझ लेना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, यह बात को हमेशा नित्य ध्यान में रखना चाहिए। हम नहीं कर पा रहे जो प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम ही उसके लिए जिम्मेदार है, केवल मनुष्य शरीर ही यज्ञ कर्म के लिए जिम्मेदार है, अर्थात जो प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त नहीं हो रहा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार है, है कि नहीं, कोई दूसरा है, हम ही जिम्मेदार। और इस शरीर में ये यज्ञ कर सकते, ये भी बात फैक्ट है तो सोचिए क्या करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। आगे की पंक्ति है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, मुक्त संग समाचर, अर्थात मन लगाकर आसक्ति रहित होकर इन सब बातों का आचरण करते हुए कर्म करना चाहिए। कर्म पहले कैसे करना चाहिए, आसक्ति रहित, मुक्त संग, अर्थात आसक्ति रहित मुक्त होना चाहिए, किससे, संग से, किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त रह होकर समाचर अर्थात सम आचर, सम अर्थात मन को स्थिर करके, आचर अर्थात आचरण में लाके, क्या आचरण में लाके, क्या आचरण में लाना होगा, जो उपदेश बताए गए जो बातें कही गई उन सबको आचरण में लाते हुए मन स्थिर करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करना चाहिए। लेकिन मुक्त संग समाचर, ये दो शब्द हमेशा याद रखो, क्या, मुक्त संग समाचर, अपने कर्म करते वक्त पहला पॉइंट क्या है, मुक्त संग आसक्ति रहित, सम अर्थात स्टेबल माइंड, आचरण अर्थात एप्लीकेशन, जो कुछ भी समझे, जो भी ज्ञान प्राप्त है उसको अप्लाई करो, डिटैच रहो विथ स्टेबल माइंड, अप्लाई योर नॉलेज. डिटैच अर्थात अनासक्त रह के स्टेबल माइंड से अपने ज्ञान को अप्लाई करो कर्म करते हुए. मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई करते वक्त यदि मैं सोच रहा हूं कि मेरा कैसा होगा, फिर मैं ट्वेल्थ में हूं तो इंजीनियरिंग करूंगा या मेडिकल डॉक्टर बनूंगा, या कोई बिजनेसमैन हूं सोच रहा हूं कि कल क्या करूंगा, कल उससे मिलना है, उससे मिलना है, या सुबह ऑफिस में पहुंचा हूं दोपहर के बाद उसको मिलना है, 4 बजे उसको मिलना है, 6 बजे घर पे जाना है, 7 बजे के करना है, 10 बजे सोना है, मैं अभी क्या कर्म कर रहा हूं उस कर्म में मेरा माइंड स्टेबल नहीं है. और क्योंकि मैं इतने विषयों के बारे में सोच रहा हूं इसलिए उनके प्रति थोड़ी बहुत आसक्ति भी हो गई है. और ये दोनों चीजें होने के कारण मैं अपना पूरा ज्ञान अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं अभी के कर्मों में जो अभी कर रहा हूं. इससे अर्जुन की यह दशा है. अर्जुन क्या सोच रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा क्या होगा, अर्थात मनस्थ मेरे है अर्थात अटैच. अटैचमेंट और अनस्टेबिलिटी के कारण ज्ञान होते हुए भी अपने ज्ञान को हम अप्लाई नहीं कर सकते. कौन से दो कारणों के वजह से, दो कारणों से हम अपने ज्ञान को अप्लाई नहीं कर सकते बताइए, आसक्ति और अस्थिरता. अटैचमेंट एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, इन दो बातों के कारण हम वी कैन नॉट गिव योर 100%. हम बोलते हैं ना गिव योर 100%, नोबडी कैन गिव 100%, कोई नहीं दे सकता 100%. बोलने की बात है क्योंकि मन माइंड इज ऑलवेज अनस्टेबल और ऑलवेज अटैच समवेयर, हमेशा कहीं ना कहीं अटैच रहता है, आसक्त रहता है. इसलिए अपना पूरा ज्ञान होते हुए भी अपने पूरे ज्ञान को अप्लाई नहीं कर सकते. भगवान इस पे मुक्त सांग समाचार कह रहे अर्जुन इस प्रकार से कर्म करो. किस प्रकार से, अटैच मत रहो, डिटैच रहो और स्टेबल रखो, मन को स्टेबल रखो, जो कुछ भी कहा उसको आचरण में लाओ. जो कुछ भी ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुम उसको अप्लाई करो. हमेशा यह बात ध्यान में रखना चाहिए. हमारे डिसीजंस में गड़बड़ी, कभी भी कोई भी निर्णय लेने में गलती हो, कभी हो सकती है जब हमारे ज्ञान को हम पूरी तरह से अप्लाई नहीं करते. और कब ज्ञान को कब नहीं अप्लाई कर सकते, जब हम अनस्टेबल रहते हैं या अटैच रहते हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे और उससे भी सादा सोपा मार्ग है गृहस्थों के लिए. रूपा जी कहते हैं, रूप गोस्वामी ने क्या किया, गृहस्थों ने क्या, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे अपने कर्मों को शुद्ध बनाना चाहिए, तो रूप गोस्वामी का, रूप गोस्वामी से प्रेरणा लेना चाहिए. रूप गोस्वामी ने क्या किया था, अपना जितना भी इनकम है उसको डिवाइड कर दिया था. 50% ऑफ द इनकम, 50% इनकम जो है सत्कार्य के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, भगवत कार्य के लिए, समाज सेवा, सब जो भी है भगवत कार्य के लिए 50%, 25% अपने परिवार के लिए और 25% भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के. ऐसा भी कोई पैटर्न रखता है अपने इनकम का तो भी उसके कर्म शुद्ध हो सकते हैं. तो प्रभुपाद जी ने और फैसिलिटी दे दी. प्रभुपाद जी के 50% भले ही आप मत दो, 4-5% तो साल के दे सकते हैं. फिर एक जगह प्रभुपाद जी बोले 2% भी देते हैं तो बहुत हो जाता है आध्यात्मिक कार्य के लिए. कहने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं अपने आप को आध्यात्मिक कार्य में प्रचार प्रसार में लगाए रखो, अर्थात भगवान की सेवा प्रचार और प्रसार करके भगवान की सेवा करो, जितने स्तर पे कर सकते हो उतने स्तर पे करो, जो स्तर पे कर सकते हो वो स्तर पे। यह अर्थ है। तो गृहस्थ के लिए ये विशेष बात है कि ये कार्य करते हुए वो अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्री प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से ये कर्म है, कर्म बंधन में न फंसे, कर्म बंधन में नहीं फंसने के सुपर शॉर्ट कैप्सूल आज दी गई है, दो तीन कैप्सूल है, रोज एक एक भी लेते हैं तो साइड इफेक्ट नहीं है, बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। हरे कृष्ण। हाँ प्रश्न पूछिए। भगवान को भूल क्यों किया ना, लेकिन भगवान को भूल के क्या अच्छा हो सकता है, जिसमें भगवान एक कहावत है हिंदी में, उसमें क्या राम है, राम नहीं है तो क्या दम है, भगवान नहीं है। देखिए प्राणी के प्रति आसक्त हो गए, एकदम उसी के प्रति आसक्त हो गए, और कृष्ण का बिल्कुल ही स्मरण नहीं रहा, 100% ब्लैंक हो गए, पूरी तरह से भूल गए। कर्म अच्छे करो, समाज कार्य करो, सब कुछ करो। ऐसे तो बहुत से लोग बहुत से गरीबों को खिलाते हैं, हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में खिलाते हैं, और अपना नाम लिखते हैं, फलाने फलाने से फलाने फलाने उन्होंने इतना अन्नदान किया, लेकिन वो करते वक्त यदि भगवान का स्मरण नहीं है, भगवान के प्रति शरणागति का भाव नहीं है, तो उससे उनका अहंकार ही बढ़ेगा और उससे वो फिर बंधन नहीं आएंगे, भले ही वो अन्नदान क्यों ना करे, वो बंधन नहीं आएगी भगवान, क्योंकि इस युग इस कलयुग में आई इस संसार में जो तीन गुण है नित्य हमारे ऊपर प्रभाव करते रहते हैं नित्य, और कोई भी एक गुण कंटिन्यू नहीं रहता है, तो तमोगुण भी हमारे अंदर है, रजोगुण भी हमारे अंदर, और केवल भगवान ही इन तीनों गुणों के ऊपर है। मान लो थोड़ी देर के लिए भी हम उनको भूल गए, तो ये तीनों गुणों में से तमोगुण विशेषकर हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक हमला कर सकता है कि हमको वही बांध के रख देगा बहुत बुरी तरह से। अब इनके ऊपर केवल एक ही वो है भगवान, इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए आप समाज कार्य करो, कुछ भी करो, तो बंधन में नहीं फंसे, क्योंकि भगवान के नाम के स्मरण से सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, गुणों का प्रभाव कम हो जाता है, माया दूर हो जाती है। इसलिए भरत महाराज ने सब कुछ किया, लेकिन कुछ समय के लिए वो इतने मतलब 100% भूल गए, पूरी तरह से भूल। और जब हम भूल जाते हैं तभी घात होता है, जब हम स्मरण करते तभी कभी माया की क्या हिम्मत है आपके पास में आ जाए, कोई भी गुण की क्या हिम्मत है जब आप स्मरण करें और आपको बांध दे कर्मों के बंधन, उनको चांस ही नहीं, उनको तो चांस तभी मिलेगा ना जब आप नाम नहीं लोगे, तो वो तो देखते ही रहते कब चांस मिलता है, और भरत महाराज ने चांस दे दिया, पूरी तरह से हिरणमय हो गए, कृष्णमय होने के बदले हिरणमय हो गए, और इसलिए वो बंधन दिखा। इसलिए कर्म भी करते हैं सब कुछ भी करते हैं तो कॉन्शियसनेस चेतना क्या होनी चाहिए, भगवत चेतना, तब बंधन में नहीं फंसे। हम अपने स्तर पे बोल सकते हैं ये अच्छे कर्म है ये अच्छे कर्म है, लेकिन ये अच्छे भी कर्म हो तो भी गुण जो है माया देवी जो है खड़ी है वहां पे हमारे ऊपर आक्रमण करने के, केवल अच्छे कर्म हमको बचाने उनसे बचा नहीं सकते, उनसे कोई बचा सकता है तो भगवान, और भगवान का विस्मरण अर्थात माया का स्मरण। भरत महाराज की कथा तीसरे स्कंद में आती है, त्रेता युग में होना चाहिए, क्यों युग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आज भी हो सकता है हमारे साथ, ये जो कथा है भरत महाराज की ये आज भी हमारे साथ होती है, और वो वैसे ही जिस प्रकार से हिरण भरत महाराज हिरण के प्रति अट्रैक्ट हुए उसी प्रकार से माता सीता भी हिरण के प्रति त्रेता युग में अट्रैक्ट हुई थी। तो कोई भी युग में अट्रैक्शन, कोई भी युग में हम भगवान को भूलते हैं, भूल का तो उसमें कोई वो नहीं है। कलयुग में सबसे ज्यादा, अच्छा कलयुग में सबसे ज्यादा भूलने का पॉसिबिलिटी है, सबसे ज्यादा इसी युग में सबसे ज्यादा भूलते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दी है भगवान इस युग में। मंद सुमत है और है ना, मंद मति है, मंद भाग्य है, मंद मति है, इसलिए फैसिलिटी ज्यादा है। भगवान बैलेंस कर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Thank you.